ٹرک کا گھومتا پہیا کینیڈا کی معیشت کی ترقی کا ضامن، آپ کا ٹرک سڑکوں پر راج کرے اور کینیڈا کی معیشت ترقی کی راہ پر گامزن رہے۔ ٹرک مینول یا پھر آٹومیٹک، ٹرک کی بہترین سروس کے لیے کوئک ٹرک لیو تھرو آؤٹ انٹیریو، نو اپوائنٹمنٹ نیڈیڈ، ڈرائیو تھرو فیسلٹی، ون اسٹاپ شاپ۔ اب تیسری لوکیشن ایگزٹ 579 فرام ہائی وے 401 ان نیپنی، کوئک ٹرک لیو 519-622-0660، quicktruckloop.com۔
سی آئی بی سی گلوبل منی ٹرانسفر کے ساتھ اپنے پریوار کو زیادہ سے زیادہ خوشیاں دیں۔ سی آئی بی سی گلوبل منی ٹرانسفر کی $0 ٹرانسفر فیس کا فائدہ اٹھائیں اور اپنے پریوار تک پہنچائیں اور بھی زیادہ پیسے۔ آج ہی cibc.com/gmt ایونٹ پر جائیں اور پرومو کوڈ GMT ایونٹ کے ساتھ اپنے پہلے ٹرانسفر پر $300 تک واپس پائیں۔ شرطیں اور سی آئی بی سی فورن ایکسچینج ریٹس لاگو۔
نان این کباب جی ٹی اے میں 6 لوکیشنز اور اب مسساگا میں بھی۔ نان این کباب، اوتھینٹک اگوان کوزین، فریش اینڈ ڈیلیشیس گرل آئٹمز اینڈ ڈنر پلاٹر فور پک اپ اینڈ ڈیلیوری۔ آرڈر تھرو nandk.ca، 90 اینگم بلیوارڈ مسساگا اور انٹاریو، N401-905-501-9889. نان این کباب۔
فرنٹ لوڈ واشر اینڈ ڈرائر، انرجی سیور، انرجی سٹار، ٹی وی سیکشن اچ سونی، سیمسنگ، پیناسونک، شارپ، ہر سائز سے ہر برانڈ دا ٹی وی ود دا لوئسٹ پرائسز ان دا ٹاؤن، صرف برامپٹن ٹی وی اینڈ اپلائنسز تے۔ برامپٹن ٹی وی اینڈ اپلائنسز، 801 Drive West, Brampton, ya call karo 905-450-2828-905-450-2828.
Ayyayo, who is the stager?
Complete home furniture and appliances, latest style, color, fabric, golden ya phir silver, modern, traditional, contemporary furniture and decor. Complete home furniture and appliances, must see, must visit a designer's collection and affordable price.
Seeing is believing. Complete home furniture and appliances.
No cost, free advice. 547 Steeles Avenue East in Brampton. 905-244-4663. 244-4663.
کیا آپ ایک کار ایکسیڈنٹ میں انوالو ہیں اور آپ کو بہترین لائر کی تلاش ہے؟ ہیموفار پریزنس کی آپ کے لیے ایک جانا پہچانا لائر ہے اور میں آپ کی اپنی انجم قریشی آپ کے مسئلوں کو ان تک پہنچاتی ہوں۔ ہماری کنسلٹنسی بالکل فری ہے۔ کار ایکسیڈنٹ میں آپ کا مشورہ لینا آپ کا قانونی حق ہے۔ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 416-570-0157۔ جی ہاں، 416-570-0157۔
اگر آپ کو ریئل اسٹیٹ ٹرانزیکشن، فیملی میٹرز، ویلز اینڈ اسٹیٹ میٹرز یا سول لٹیگیشن میں کوئی بھی دشواری ہو یا آپ کو فوری مدد چاہیے، پروفیشنل سروسز کے لیے کانٹیکٹ کریں ملک لا آفس کے محمد عتیق ملک، بیرسٹر اینڈ سولیسیٹر۔ سرو کرتے ہیں جی ٹی اے میں 2 لوکیشن سے، 7045 ایڈورٹس بولیوارڈ سویٹ 203 مسساگا، 1825 مارکم روڈ سویٹ 205 ٹورانٹو۔ Malik Law Office. Call today 647-726-1949. 647-726-1949. ویلیج ٹیلز، اب اسپیشل ٹیک آؤٹ مینیو کے ساتھ بریکفاسٹ، کڑھائی، کری، باربیکیو، باربیکیو پلاٹر، رولز اور بہت کچھ۔ آرڈر فرام اسکپڈ ڈشز اینڈ اوبر ایٹس فور ٹیک آؤٹ، کیٹرنگ، ویکلی اینڈ منتھلی فوڈ پیکجز کے لیے کال کریں 647-774-4888، 647-774-4888۔ ویلیج ٹیسٹ۔
اب مورگیج لینا اور بھی آسان، سینٹرم فیوچر مورگیج گروپ کے کاکب جاوید کو کال کریں۔ پرائیویٹ مورگیج فار اینی پرپزز، کمرشل مورگیج، انڈسٹریل مورگیج، فارم اینڈ ہابی فارم، ویری کمپیریبل ریٹس فار فرسٹ، سیکنڈ اینڈ تھرڈ مورگیج، نیو کمرز ٹو کینیڈا، فرسٹ ٹائم بائرز، سیلف امپلائڈ، ری فائنینسنگ، ڈیٹ کنسولیڈیشن، اسسٹ ان ریئل اسٹیٹ، He will make mortgage easy for you. Gokab Javed, mortgage agent, 416-454-6065.
दांतों के इलाज के लिए डॉक्टर ने बिल बहुत ज्यादा बता दिया। सोचती हूँ बैक होम जाके दांतों का मुकम्मल इलाज कराऊं।
छोड़ो भाई, किंग बेस्ट स्माइल डेंटिस्ट्री को विजिट कर लो। दांत निकालना हो, क्राउन्स, ब्रिजेस, डेंचर्स, इम्प्लांट्स, बच्चों के दांतों का मुकम्मल इलाज, रूट किनाल ट्रीटमेंट और नए पेशेंट्स के लिए फ्री इलेक्ट्रिकल टूथ ब्रश भी है। कंसल्टेशन इज एब्सोल्युटली फॉर फ्री।
पर जाना कहाँ है?
288 किंग स्ट्रीट वेस्ट, हैमिल्टन में, 905-521-0540.
से शपथ तुझा बे जमाल ही के हर एक चीज चमक उठी शपथ तुझा बे जमाल ही कोई हद है उनके उरूज की कोई हद है उनके उरूज की हल हल उला बे कमाल ही कोई हद है उनके उरूज की हल हल उला बे कमाल ही
جناب آپ نے یہ سنی علی ظفر کی آواز کشفت دجاب کمال ہی صلو علیہ وآلہ یہ تجلیوں کی ہم آہمی یہ رخ مصطفیٰ کی یہ روشنی بہت خوبصورت سی یہ ہے اور میں آپ کے ساتھ عارفہ مظفر اور میرا آپ کا ساتھ ہمارا آپ کا ساتھ آج 3 بجے سے لے کے 5 بجے تک ہوگا اس دوران آپ سے مختلف جگہوں پہ ملاقات کرائی جائے گی پاکستان انڈیا کی خبریں پیش کی جائیں گی ایک آدھ پوئم آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی آئی لو دس جینٹل مین امجد اسلام امجد بہت خوبصورت پوئٹری شاعر میرا خیال ہر انسان شاعر اپنے تئیں بہترین کوشش کرتا ہے ان کی ایک پوئم بھی میں نے آج آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنی ہے ایک اور پوئم مجھے بہت اچھی کل رات کو لگی وہ بھی میں نے آپ لوگوں کے لیے اکٹھی کی ہوئی ہے اینی ویز آج کے پروگرام میں بھی سب سے پہلے تو میں یہی کرنا چاہتی ہوں آپ سے کہ ہم ٹورنٹو کی خبریں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور چھوٹی چھوٹی چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر جاؤں گی اس کے بعد ہمارے ایک دو اسپانسرز کی ملاقات ہوگی گیت سنگیت ہوگا اور 4:15 پہ جناب باجی شمار اور شازیہ صاحب جو ہیں وہ ٹورنٹو اور انٹرنیشنل نیوز کو ان ڈیٹیل کور کریں گے پاکستان کی چھوٹی چھوٹی خبریں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی مگر آج جب میں ٹورنٹو کی خبروں کی طرف دیکھتی ہوں تو مجھے ہر خبر تھوڑی ڈپریسنگ نظر آتی ہے سامعین بعض چیزوں کو ہم اگنور کرتے ہیں میں آپ کے ساتھ ایک چیز شیئر کرتی ہوں مثال کے طور پہ جب ہم ہائی وے پہ یا جب بھی کسی بھی روڈ پہ جا رہے ہوتے ہیں تو بعض اوقات ہم ٹریفک سائنس کو نہیں نوٹ کرتے میرے ساتھ ذاتی طور پہ بھی تھا مثال کے طور پہ جب بھی کسی جیسے ہیملٹن سے اس طرف ہائی وے کی طرف کیو ڈبلیو کی طرف ملانے کے لیے ایک ریڈ ہل روڈ کا نام ہے اینڈ اٹس اے ہائی وے 3 رویہ 4 رویہ سڑک ہے اور انسان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ یہ کم اسپیڈ کی ہوگی یاد رکھیے گا جتنی 4 سیریز کی ہائی ویز ہیں وہاں پہ اسپیڈ لمٹ اگر 100 ہے تو آپ 20 کلومیٹر اوپر تک جا سکتے ہیں 19 کلومیٹر مگر 19 کی وچ از ناٹ الاؤڈ مگر یو کین گو 19 کلومیٹر تک تو یہاں کوئی ٹکٹ اتنی بڑی نہیں ہے بٹ نو سونر یو کراس 20 کلومیٹر کی اسپیڈ کو کراس کرتے ہیں تو پھر آپ کو ڈی میرٹ پوائنٹس بھی ملتے ہیں اور ظاہر ہے اس سے لانگ ٹرم انشورنس کے اوپر بڑا افیکٹ آتا ہے تو یہ جتنی عام سڑکیں ہیں جیسے ہائی وے 10 آپ کہہ لیں آپ ریڈ ہل روڈ کو کہہ لیں اور کون کون سی سڑکیں ہیں یہاں پر جو میکسیمم سپیڈ ہے دیٹ از 80 کلومیٹر مگر اگر آپ 80 سے اوپر 100 کو کراس کرتے ہیں تو آپ کو $200 سے $300 کی ٹکٹ ملے گی 3 ڈی میرٹ پوائنٹس بھی ملیں گے ساتھ میں اگر کبھی آپ کو ٹکٹ مل جائے تو آر ایس والیا کے نام کو یاد رکھیے گا میرے ساتھ ذاتی طور پہ بیتا میں آئی واز ڈرائیونگ آن ریڈ ہل ابھی 4 دن پہلے کی بات ہے اور اٹ واز اراؤنڈ رات کا تقریباً 10:30 میں اور میرا بیٹا تھے
और आई वॉज ड्राइविंग 110 की स्पीड पे मैं जा रही थी, अंडरस्टैंडिंग थी कि 100 किलोमीटर की सड़क है, 110 पे मैं जा रही थी. ऑल ऑफ सडन मैंने देखा कि पुलिस वाला दरमियान के आईलैंड से निकला और मेरे पीछे आ गया. मैं बड़ी हैरान हुई कि मैं तो 110 पे जा रही हूँ, ये मेरे पीछे क्यों आ गया. खैर मैंने अपनी गाड़ी को साइड पे लेके गई एंड आई आस्क हिम कि व्हाट हैपेंड, आई वाज जस्ट ड्राइविंग 110. ही सेड मैम दिस इज 80 किलोमीटर्स रोड, यू आर ड्राइविंग 30 किलोमीटर ओवर. बड़ा ठीक ठाक बड़ा तोहफा मिला. उसकी तो बात अपनी जगह पे है, मगर वो जो 3 डिमेरिट पॉइंट्स हैं वो उसमें ये कि यस आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि आप कोर्ट में जा सकते हैं, मगर मैं आपसे ये कहती हूँ कि जिस इंसान की फील्ड है वो बेहतर तौर पे समझता है. आर एस वालिया इज अ पर्सन 9054542112. मैं ज़ाती तौर पे ये प्रोग्राम तकरीबन 23 साल से कर रही हूँ. आई नो हिम फॉर 23 ईयर्स एंड द मैन, अगर आपको कभी टिकट मिल जाए तो आंखें बंद करके यू कैन काउंट ऑन आर एस वालिया साहब. 9054542112 उनका नंबर है. हमारे प्रोग्राम को मेगामनी एक्सचेंज ने भी तावन दिया. ऑफकोर्स जब मैं और आप कनाडा में भी हैं, मगर आपको हमारे मोहब्बत करने वाले, हमारे खून के रिश्ते, हमारे साथ वो लोग जिन्होंने हमें सर्विसेज दी हुई हैं, बेशुमार लोग और कराबतदार रिश्तेदार बेशुमार लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं. अगर आपने रकम पाकिस्तान भिजवानी है, अगर आप कुछ वहां से रकम मंगवाना चाहते हैं, बतेरे शहजादे यहां पर भी चले फिरते हैं जो अपने पैसे पाकिस्तान से मंगवा के काम करते हैं. तो साहब मिस्टर एंड मिसेस शिबाहत मेगा मनी एक्सचेंज के साथ होते हैं. फास्ट फ्रेंडली अफोर्डेबल प्राइस के साथ आप रकम भेज मंगवा सकते हैं. इनकी वेबसाइट www.megamoneyexchange.com इनकी वेबसाइट है और इनका फोन नंबर 9052794754. आज डॉलर का रेट 144 रुपए आपको मिलेगा, 144. मैं एक चीज को हाईलाइट करना चाहती हूँ कि अगर आपने 100-200 डॉलर रकम भेजनी है तो फिर 10 डॉलर के करीब मेरा ख्याल है चार्जेस हैं. आप उनको कॉल करके पूछते हैं, मगर आप 500 से अबव अगर भेजते हैं तो फिर मेरा ख्याल है चार्जेस वेव हो जाते हैं. आस्क देम, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, खुले दिल का आदमी शिबाहत साहब से आप बात कर लीजिएगा. मैं आज एक और स्पॉन्सर का जिक्र करती चलूं. आज नान एंड कबाब का, बहुत औकात ऐसे होते हैं कि इंसान का दिल, और ख़ास तौर पे जब एज जिस एज में अब मैं आ गई हूँ, या यंग जनरेशन को आप देख लीजिएगा, दे आर वेरी कॉन्शियस फॉर हेल्थी फूड. तेल नहीं डालना, ऑयल नहीं इस्तेमाल होना चाहिए. और अगर बाज़ोकात मेरे जैसे बंदे बड़े फ़खर से पहले क्या करते थे, ऑलिव ऑयल में खाना पकाया. आपको पता है अगर ऑलिव ऑयल को हम गरम कर लें, शहद को अगर हम गरम कर लें तो शहद की तासीर ही बदल जाती है. इसी तरह ऑलिव ऑयल को कच्चा सैलड पे डाल के खाएं, दिस इज़ गुड फॉर योर डाइजेस्टिव सिस्टम, दिस इज़ गुड फॉर आवर कॉलन. मगर अगर हम ऑलिव ऑयल को मैं तवे पे डाल के ऊपर कबाब भून के खाऊंगी तो ऑलिव ऑयल तो सड़ के उसकी केमिस्ट्री चेंज हो जानी है. तो मैं एक जिक्र करती होती हूँ, नान एंड कबाब एक रेस्टोरेंट है, उसका मैं जिक्र करती होती हूँ. ऑल ग्रिल्ड फूड है, वेरी डिलिशियस, वेरी डिलिशियस, जूसी, माउथ वाटरिंग विद सैलड. दे हैव 6 डिफरेंट लोकेशन, 2 स्कारबरो में है, स्कारबरो में 2, डाउनटाउन टोरंटो में, और मेन स्ट्रीम बड़ी इनकी मद्दा है. अब तो मिसिसागा में 90 एनेगम बुलेवार्ड पे. व्हाट अ ब्यूटीफुल, एंड उसकी जो एम्बियंस है, अंदर जाइए आपको जाके ठंड पड़ेगी सीने में. तो नान एंड कबाब पे तशरीफ लेके जाएं, टेक आउट भी है इस वक्त, तो टेक आउट कर सकते हैं. वी हैड देयर फूड टुडे. एनीवेज नान एंड कबाब 90 N&K पे चले जाएं आप तो आपको पता चल जाएगा. एक मैंने आर्टिकल भी आज आपके साथ शेयर करना है, मगर एक पोइम जो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, अमजद इस्लाम अमजद की, हालांकि उनकी गजल, ये गजल है, उनकी आज़ाद नज़म नहीं है. कहते हैं कि दुनिया का कुछ बुरा भी तमाशा नहीं रहा, दुनिया के हवाले से है, दो लोगों के साथ के हवाले से है. दुनिया का कुछ बुरा भी तमाशा नहीं रहा, दिल चाहता था जिस तरह वैसा नहीं रहा. तुमसे मिले भी हम तो जुदाई के मोड़ पर, कश्ती हुई नसीब तो दरिया नहीं मिला. कहते थे एक पल न जिएंगे तेरे बगैर, कहने की बात है, कहते थे एक पल न जिएंगे तेरे बगैर, हम दोनों रह गए पर वो वादा नहीं रहा. काटे हैं इस तरह से तेरे बाद रोज़ो शब, मैं सांस ले रहा था पर जिंदा नहीं रहा. بہت خوبصورت.
کیا بات ہے,
کاٹے ہیں کچھ اس طرح سے تیرے بعد روز و شب, میں سانس لے رہا تھا پر زندہ نہیں رہا, آنکھیں بھی دیکھ دیکھ کے خواب آ گئی ہیں تنگ, دل میں بھی اب وہ شوق وہ لپ کا نہیں رہا, کیسے ملائیں آنکھ کسی آئینے سے ہم, امجد ہمارے پاس تو وہ چہرہ نہیں رہا. بہت خوبصورت یہ پوئم مجھے لگی, اور میں نے کہا کہ میں اپنی اس خوبصورت سی آج کی پسند کو آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلوں. اسی کی مناسبت سے ہم ایک گیت کی جانب بھی آپ کو لے کر کے چلیں گے, مگر میں نے ایک آرٹیکل بھی آج آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے, مجھے بڑا اچھا لگا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے. اس کا عنوان ہے کھوٹا سکہ اور گندا سکہ, اس کو ہم بعد میں شیئر کرتے ہیں, مگر آج میں ٹورنٹو کے حوالے سے ایک چیز شیئر کروں. ہمارے نے آج ہی شاہ جی سے ریکویسٹ کی ہے کہ ہم شاید فائر ڈپارٹمنٹ سے, جو ان کا میڈیا کنسلٹنٹ ہیں یا میڈیا پرسنل ہیں, ان کو آپ کے ساتھ لے کے آئیں اپنے گھر میں. میں آپ سے یہ بات کر رہی ہوں اور قسم کی بات ہے کہ آئی تھاٹ کہ آج میں نے گھر جا کے اپنے گھر میں جا کے یہ کام کرنے ہیں. فائر الارمز ہر 2 سال کے بعد اس کی بیٹری چینج ہونی چاہیے. فائر الارم, یہ فائر الارم جو ہے میرے آپ کے سر پہ کوئی بندوق یا استرا یا تلوار نہیں ہے, دس از فار آر اون سیفٹی. اب آپ دیکھیے گا یہ دوسرا واقعہ برمپٹن میں ہو گیا, پہلا واقعہ ہوا تھا ٹوربرام اور کلارک کے اوپر, آج بریملی اور کلارک کے ٹاؤن ہاؤس میں ہوا ہے. اور 770 پہ آپ یہ کمرشل بھی سنتے ہیں کہ سردیوں میں آگ لگنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں, کوکنگ کرتے ہوئے یا آپ جو ڈیوائسیز ہیں ان کو پاس نہ رکھیں, ہیئر سپریز کا استعمال کوکنگ کرتے وقت قریب نہ رکھیں, نیلز پالش ریموور اس کا یعنی کوئی چیز جو آگ پکڑ سکتی ہے اس کو وہاں پہ قریب مت رکھیں, اپنے گھر کے فائر الارم ضرور چیک کریں, اگر اپنے گھر میں کاربن مونو آکسائڈ کا جو آلہ ہے اس کو ضرور آپ چیک کر کے سوئیں, یعنی ان کی بیٹریز کو چیک کر لیجئے گا. اکثر اوقات لوگ یہ کہتے ہیں او یار میں روٹیاں پکانیاں سی تو دھواں ہو جاتا ہے تو الارم بولنے لگ جاتا ہے, میں بیٹری کٹ دی. بالکل صاحب, دس از یور ہوم, ڈو وٹ ایور یو وانٹ, مگر ایک بات یاد رکھیں کہ فائر کے بعد جب فائر انسپیکٹرز آ کے گھر کی انسپیکشن کرتے ہیں, انشورنس آ کے گھر کی انسپیکشن کرتی ہے, تو دے سی کہ اس آگ لگنے کی وجہ کیا ہے. وہاں پہ ان کو یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ فائر الارمز کام کر رہے تھے کہ نہیں کر رہے تھے. یہاں پہ آپ کو انشورنس میں ڈینائل بھی مل سکتا ہے بیکاز آپ نے اپنی جو ڈیوٹی تھی اس میں غفلت برتی. تو پلیز اپنے گھر کے فائر الارم ضرور چیک کیجئے گا, ہر لیول پہ فائر الارم ہونا چاہیے, جہاں آپ سوتے ہیں سونے والی جگہ کے قریب, اس کے باہر کاربن مونوآکسائڈ کا اکوپمنٹ. اب تو جو نیا سسٹم آیا اس میں تو فائر الارم اینڈ کاربن مونوآکسائڈ ایک ہی جگہ پہ انہوں نے اکٹھے کر دیے ہیں. آج برمپٹن میں صبح 3:30 بجے کے بعد برمپٹن میں بریملی اور کلارک کے پاس نیبرز نے کال کیا, اگین ٹاؤن ہاؤس کو ایک کو آگ لگی ہے. ویری سیڈ, ٹو بی آنیسٹ دکھ بھی ہوا, اور اس گھر کو آج آگ لگ گئی اور بالکل ایک حصہ اس کا تباہ ہو گیا. بلکہ عامر نے آپ کو یقیناً ویڈیو بھی اس کی ضرور شیئر کرنی ہے میں نے آپ کے ساتھ کہ کیا ہوا کیا برمپٹن میں. یہ بریملی اینڈ کلارک کے علاقے میں ٹاؤن ہاؤس ہے جس میں آگ لگی ہے. آپ دیکھ لیجئے گا جو لوگ ٹیلی ویژن ہمارے ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ گھر تو جلا ہی جلا, گھر کے پاس جو گاڑی کھڑی تھی وہ 3-4 گاڑیاں, بلکہ نیبرز کو تو ویکیٹ کر لیا گیا, نیبرز سے تو گھر خالی, کیونکہ دیز آر ٹاؤن ہاؤسز اور ساتھ ساتھ ملے ہوئے گھر ہیں, تو یہ گھر تو بالکل نہ صرف ان کا گھر بلکہ ہمسائے کا گھر بھی بالکل جل کے خاکستر ہو گیا ہے. تو بہرحال جو گاڑیاں کھڑی تھیں ان کو بھی بھاری نقصان پہنچا ہے, یہ گھر تو آج پھر چلتا ہوا. تو کوشش کریں کہ آپ اپنے گھر کے آج فائر الارمز کو خاص طور پہ جا کے آپ نے چیک کرنا ہے, اور ضرور چیک کرنا ہے. اس کے علاوہ آج ایک اور چیز جو پتہ چلی, آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ ایک گروپ تھا وہ ٹریول کر رہے تھے, اور ٹریول کرتے ہوئے مینیٹوبا کی طرف جا رہے تھے. آج آفیشل نے آئیڈینٹیفائی کر دیا ان 4 لوگوں کو. اس میں ایک آدمی ہے جو انڈین نژاد ہے, انڈین کاؤنسلیٹ بھی بلکہ انوالو ہوئی ہے, اور آٹوا نے ان 4 لوگوں کے نام اناؤنس کر دیے ہیں. یہ مینیٹوبا کے پاس یو ایس بارڈر کو کراس کر رہے تھے. کیا پڑ گئی تھی, میں تو یہ کہتی ہوں کہ جب آپ کے پاس کوئی ریفیوجی آ گیا ہے تو آپ اس کو ایکسیپٹ کر لیں بجائے اس کے کہ اس طرح سے مرنے سے بہتر ہے کہ ان لوگوں کو ایکسیپٹ. اٹس سو سیڈ. اب دیکھیے ایک چھوٹا سا بچہ, محبت کا عالم دیکھیں, جیسی باپ نے جیکٹ پہنی ہوئی ہے ویسی جیکٹ ہی بچے نے پہنی ہوئی ہے. عورت کے اپنے خواب ہوں گے, اور وہ جو چھٹی بچی تھی وہ بھی 11 سال کی تھی. وہ کہتے ہیں کہ ہائی کمیشن آف پاکستان انڈیا, انہوں نے بھی ریلیز کر دیا ہے کہ ایک نام ہے جگدیش بلدیو بھائی پٹیل, فیملی سے تعلق ہے, 39 ایئرز ان کی عمر تھی, 39. ان کی وائف جو ہے وشوا لبن جگدیش کمار پٹیل, 37 ان کی ایج تھی. ان کی ایک بچی جو ہے وہ بھی وہانگی جگدیش کمار پٹیل, 11 سال اس بچی کی عمر تھی, اور ایک 3 سال کا لڑکا. ویری سیڈ سر. میں آئی واز ٹو بی آنےسٹ, انسان انسان ہوتا ہے, ہر انسان کے خواب ہوتے ہیں. میں تو ان خوابوں کو دیکھ رہی ہوں کہ نامعلوم جب انہوں نے اپنے سفر کا آغاز کیا ہوگا تو کس طرح سے کیا ہوگا. آپ دیکھیے گا بارڈرز کو کراس کرتے ہیں, سمندروں کے بیچ میں کشتیاں ڈوبتی ہیں, ہم اس کو کہتے ہیں یہاں پہ کون لوگ ہیں جو ان کو اس طرح پار کرتے ہیں, کرواتے ہیں, اور چار کے چار مر گئے. امیجیٹلی ریلیٹیوز کو انفارم کر دیا گیا ہے, اور کاؤنسل جنرل آف انڈیا ٹورنٹو میں آج انہوں نے جو فیملی ہے ان سے ان لوگوں کے تمام کاؤنسل سپورٹ بھی پرووائڈ کی ہے, اور اسپیشل ٹیم لیڈ بائی دا سینئر کاؤنسل آفیسر فرام دا کاؤنسل جنرل آف انڈیا از ان مینیٹوبا ٹو ہیلپ ود دا انویسٹیگیشن ان کینیڈین سائڈ اینڈ ٹو آفر سروسز ٹو دا وکٹمز. جو مینیٹوبا کی آر سی ایم پی ہے, فاؤنڈ دا 4 bodies نیئر امرجن مین آفٹر یو ایس بارڈر پیٹرول ایجنٹس ایڈوائز دیم دے ہیڈ پکڈ اپ ا گروپ آف انڈین نیشنلز آن دا یو ایس سائڈ. یو ایس سائڈ سے ملے تھے, ان کے پاس ٹاڈلر کی, چھوٹے بچے کی کچھ چیزیں بھی تھیں. بعد میں یہ چاروں کی باڈیز یہاں سے ملی. جو 11 سال کی بچی تھی وہ شاید 4 قدم آگے تھی, اور آگے جا کے انہوں نے ایک وین کے اندر بیٹھنا تھا جن میں ان کا ضروری سامان بھی تھا. الٹیمیٹلی آج ان چاروں کے نام ہوئے. آپ دیکھیے گا کیا ایج ہے, 39 آدمی کی عمر ہے, 37 عورت کی عمر ہے, 11 سال بچی کی عمر ہے, 3 سال بچے کی عمر ہے, پورا کا پورا خاندان جو ہے وہ جاتا
ہے. جی یہاں پر یہ بتانا ضروری ہے, لوگوں کو وارن کرنا چاہیے کہ ان کے کوئی رشتہ دار, بہن بھائی وغیرہ جو ان لوگوں کے ہاتھوں میں نہ چڑھے کہ جو بارڈر کراس کرواتے ہیں, کیونکہ بارڈر کراس کرنے میں بہت بڑا رسک ہے, اینڈ دس از دا بگیسٹ رسک دیٹ یو آپ کی اپنی زندگی ضائع ہو جائے اس میں.
بہت شکریہ صاحب. آج ٹیمپریچر نے پلس کو ٹچ کرنا تھا, اور پلس کے بعد مائنس, اور پھر برف باری ہونا تھی. مجھے تو ابھی بھی ٹھنڈ لگ رہی ہے.
-4 ہی ہے ابھی,
-4 ہے, مگر کہتے تھے کہ 4 کے اوپر -4 سے. ابھی ونڈ چل کے ساتھ شاید اس سے بھی زیادہ ہوگا, -4 ٹیمپریچر ریکارڈ کیا جا رہا ہے, مگر آج شام میں برف باری کا خیال کیا جاتا ہے. میں نے آپ کے ساتھ ایک اور چیز بھی شیئر کرنی تھی. ہمارا ایک بہت پیارا ایک میرا بیٹا ہے, سیٹرڈے کو پروگرام کرتے ہیں صبح مارننگ آورز میں, اوپننگ وہی پروگرامز کی کیا کرتے ہوتے ہیں. اکثر لوگوں کو گلا ہے کہ برامپٹن میں سنو. میں یہ کہتی ہوں کہ برامپٹن میں ابھی تک, آپ کو پتا ہے جو پچھلی برف پڑی تھی اس میں ٹورنٹو سے تاحال برف کو نہیں ہٹایا گیا. آپ ذرا شیئر کریں ماجی.
کتنے ہنڈریڈس اینڈ ہنڈریڈس آف ٹنز آف سنو جو ہے انہوں نے آلریڈی ریموو کر دی ہے, مگر ان کے پاس اب جگہ ہی نہیں ہے کہ کہاں پر لے آ کے سنو کو پھینکا جائے. تو بے انتہا جو سڑکیں ہیں ٹورانٹو کی, وہ ابھی تک بھی گاڑی چلانے کے قابل نہیں ہے. پارکنگ تو چھوڑ دیں, کیونکہ لوگ نارملی آؤٹ سائڈ اپنے گھروں کے پارکنگ کرتے تھے, وہ الاؤ ہے, مگر اس کو بھی انہوں نے بند کر دیا. جناب میئر جان ٹوری صاحب نے ریکویسٹ کی ہے کہ بھائی اپنی گاڑیوں کو وہاں سے ہٹا دیں تاکہ ہم کام کر سکیں, مگر اسٹل گوئنگ ٹو ٹیک کپل مور ویکس اگر وہاں اور سنو نہ پڑی تو.
بہت شکریہ ماجد بھائی. اور ہم ایک ملاقات اسی حوالے سے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ بعض اوقات انسان گلہ کرنا بڑا آسان ہوا کرتا ہے, مگر برامپٹن میں برف ہٹا دی گئی تھی. برامپٹن بڑا کلین چل رہا ہے, اور میں آف کورس اپنے میئر کو اس کی مبارکباد بھی ضرور دینا چاہتی ہوں. آج صاحب مجھے خود ہائی وے پہ جانے کا ہوا. آپ کو پتہ ہی ہے کہ ٹرکرز کی ریلی جو ہے ٹورنٹو کو کراس کر رہی ہے, بلکہ ہمارا مسساگا اور اٹوبیکو کے علاقے کو کراس کیا. بے شمار خلقت میں لوگ جو تھے وہ پلوں کے اوپر کھڑے ہوئے تھے, اور ہائی وے 401 ریمپ ان کا پولیس کا کنسرن تھا. پولیس نے ریمپس کو بند کر دیا, पुलिस का कंसर्न था कि जो ट्रकों का जो कॉन्वे ये एक जुलूस गुजर रहा है यकीनन इस ट्रैफिक में ब्लॉकेट होगी। और शाम के वक्त जिन लोगों ने अपने घरों की तरफ जाना है आपको मजीद सड़कों पे तंगी बर्दाश्त की जाना पड़ेगी। यकीनन अगर आमिर उसको दिखा सकें तो वो कहते हैं कि हाईवे 401 को बंद किया है ये यहां से जब गुजरते हुए। बल्कि माजी भाई अगर आप शामिल ही हो जाए तो बहुत अच्छी बात है मेरे साथ कि ये जो ट्रकर्स हैं। अब एक कंसर्न है ये तमाम की मंजिल ओटावा है और कहा जाता है कि इनके साथ राइट वे के लोग।
इन्होंने शुरू किया ये ब्रिटिश कोलंबिया से इन्होंने शुरू किया है और ओटावा एंड रिजल्ट होगा। मगर खदशा ये है कि इनके साथ जो आपने अभी थोड़ा सा बताया कि राइट विंग के लोग शामिल हो गए हैं, यस वो खदशा इनके पास अभी है। मगर ओटावा की पुलिस एंड ओटावा की जो गवर्नमेंट है वहां पर उन्होंने पूरे इंतजाम किए हुए कि ऐसा ना हो कि ये January 6 की तरह जो अमेरिका में हुआ था वैसा कुछ मामला हो जाए।
जी साहब सुन रहे हैं आप प्रोग्राम साज़ो आवाज़ और देखें बल्कि आमिर उसको दिखा भी रहे हैं और मैं नहीं चाहती कि मैं इंटरप्ट करूं। बेशुमार ट्रकर्स थे और बेशुमार लोग जो उनके साथ हैं। नो मैंडेट फॉर एनी मैन कीप आवर लैंड ग्लोरियस व्हेन द पीपल फियर द गवर्नमेंट देयर इज अ टायरनी व्हेन द गवर्नमेंट फियर्स द पीपल देयर इज अ लिबर्टी। ओह वाओ क्या क्या स्लोगन्स लोगों ने पकड़ के रखे हुए हैं। और
वी आर द रेजिस्टेंस
ठीक है, यानी हम इसके दरमियान में रुकावट हैं या मुजाहमत हैं इसके दरमियान में। लीजिए साहब यहां से ये आज गुजर गया, इन्होंने यहां से हाईवे 400 की मॉल के ऊपर इकट्ठा होना था। अब ये वहां से
वॉर्मिल्स मॉल पे वहां इकट्ठे होके वहां से निकल के 401 लेनी है उन्होंने, 401 और 401 ईस्ट लेके फिर यहां से जाए।
इसके लिए बहुत सारी लोग डोनेट भी कर रहे हैं, पैसा भी जमा किया जा रहा है। बल्कि आज का ये था कि जो ट्रकिंग ऑर्गेनाइजेशन है बल्कि वो तो चाहती है कि ये जो ये पैसा इतना इकट्ठा किया गया है बजाय इसके कि इनके खानों के ऊपर रिहायश के ऊपर ट्रक के पेट्रोल पे खर्च किया जाए, ये तमाम का तमाम पैसा फूड बैंक्स को दे दिया जाए ताकि बेशुमार लोग इस वक्त जिस क्राइसिस में से गुजर रहे हैं फूड बैंक्स को फूड की बड़ी जरूरत है तो ये वहां पे काम आ जाए। मगर नहीं साहब गवर्नमेंट का कंसर्न है, देखते हैं ओटावा को किस तरह से आगे क्या गुजरती है। क्योंकि कहा यही जा रहा है कि दे आर कंसर्न कि जो रैली हुई थी अमेरिका में उस तरह की सूरत हाल ना हो जाए, क्योंकि उन्होंने कहा इन ट्रकर्स के साथ कुछ लोग आके जुड़ गए हैं जो राइट विंग के हैं जो कि ओटावा में जाके बिल्कुल वही खलबली मचा सकते हैं जो कि कैपिटल हिल में मचाई गई थी। साहब एक आर्टिकल मेरी नजर से गुजरा, मैं आपके साथ वो भी शेयर करना चाहती हूँ। इसको शेयर करने की एक वजह भी है और इसका नाम है खोटा सिक्का गंदा सिक्का। एक्चुअली ये प्री पार्टीशन पाकिस्तान बनने से पहले हिंदुस्तान में बहुत से लोग जो पाकिस्तान मूव हुए थे वो अपना असासा जात को वहीं पे छोड़ के आ गए थे। और वो लोग जिन्होंने उस कोशिश, मैंने कहा मुझे और आपको शायद उस आजादी की कदर ही नहीं है, मगर वो लोग जो अपना सब कुछ लुट लुटा के आए थे उन लोगों को आजादी की कदर थी। और उसमें इसमें एक स्मगलर का भी जिक्र आता है और जब उस स्मगलर ने वो पैसा और सोना रुपा इस कंसर्न्ड आदमी को या इस मुतल्लिका आदमी को ला के दे दिया तो उसने कई किलो सोना उस स्मगलर को बतौर उजरत अदा किया। तो उसने कहा कि मैंने सारी जिंदगी स्मगलिंग की है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। उसने वो भी उस वक्त के पाकिस्तान को दे दिया। अब ये आर्टिकल मेरी नजर से क्यों आया, क्यों मुझे अच्छा लगा कि आज एमनेस्टी इंटरनेशनल ने जब पाकिस्तान के, इंडिया की भी रिपोर्ट कोई इतनी अच्छी नहीं, मगर ऑफकोर्स मैं बजाय इसके कि दूसरे की तरफ उंगली उठाऊं पहले मैं अपने घर को तो देख लूं, तो एमनेस्टी इंटरनेशनल ने जो बयान दिया है उसकी बुनियाद के ऊपर मुझे जब ये नजर आया कि देयर वाज अ टाइम जब पाकिस्तान बना था वो जिन लोगों ने कुर्बानियां दी थी उन्होंने इस मुल्क के लिए सब कुछ अपना दिया भी लुटाया भी, मगर वो जिसको अंग्रेजों ने तब अमीर किया था और उनको जायदादें जमीनें घोड़ी पाल मुरब्बे दिए थे वो आज तक उस अवाम के ऊपर हुकूमत करते चले आ रहे हैं। और बेहिसी का आलम उन लोगों में इतना ज्यादा है कि शायद मेरे अल्फाज जो है उसका अहाता नहीं कर सकते। लिखते हैं कि ये सितंबर 1948 की बात है, जब हिंदुस्तान ने रियासत जूनागढ़ पर यह कहकर कब्जा कर लिया कि रियासत का हुक्मरान नवाब महाबत खान मुसलमान है, बेशक ये मुसलमान, मगर रियासत में जो अवाम है उनमें जो तादाद या मेजॉरिटी हिंदुओं की है, जो वहां का नवाब था वो महाबत खान था, मगर जितनी उसकी रियाया थी जूनागढ़ में वो ज्यादातर उसमें हिंदुओं की तादाद थी। जबकि इस इस्तेमाली रियासत जम्मू और कश्मीर पर कब्जा करते हुए, खैर किस्सा मुख्तसर ये कि जूनागढ़ पर भारतीय कब्जे के बाद नवाब महाबत खान बर वक्त अपनी तमाम अहल खाना की जान बचाकर मुख्तसर और जरूरी सामान लेकर किसी न किसी तरह पाकिस्तान पहुंचने में कामयाब हो गए। यहां उन्होंने उस वक्त के दारुल हुकूमत कराची के मशहूर इलाके खारदर में कयाम किया। ये वही इलाका है जहां की एक सड़क पर वजीर मेंशन के नाम की वो तीन मंजिला इमारत है जिसे कायद आजम की जाए पैदाइश, और महाबत खान आम आदमी नहीं था, जूनागढ़ का नवाब थे, जूनागढ़ के नवाब थे, और आप इमेजिन कर सकते हैं उन नवाबों के पास कितना पैसा था। तो ये जिस इलाके में आए, खारदर के इलाके में आए, और यहां पर कायद आजम की जो बिल्डिंग है सह मंजिला वजीर मेंशन, वहां पे उन्होंने ख्वाजा साहब अपने सरकारी खजाने में, अब वो जब जूनागढ़ से निकले थे तो उनके सरकारी खजाने में 48 मन सोना था, 48 मन। वो ऐसी जगह पर महफूज था जिसका इलम जो है वह नवाब साहब के सिवा और किसी को नहीं था। अगर हिंदुस्तानी अफवाज पूरा महल खोद के ईंट से ईंट अलग कर देते तब भी वो उस 48 मन सोने तक नहीं पहुंच सकते थे, क्योंकि ये सरकार जूनागढ़ की रियासत के सरकारी खजाने में था, मगर इसको जहां महफूज किया गया था उसका इल्म सिर्फ 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 नवाब महाबत खान को ही था। नवाब साहब की ये ख्वाहिश थी कि वो सोना किसी तरह पाकिस्तान लाया जा सके। अगर उन्होंने कहा कि मैं किसी तरह इस 48 मन सोने को जूनागढ़ से पाकिस्तान ले आऊंगा तो इसका आधा सोना जो है ना वो हम हुकूमत, उस जमाने में हुकूमत पाकिस्तान को पैसे की जरूरत भी थी, क्योंकि पाकिस्तान को बाद में गांधी साहब के कहने पे उनकी पाकिस्तान को जो विरासत में मिलना था बहुत सारी चीजें गांधी साहब जी के कहने के बाद मिली थी, वरना नहीं मिल रही थी पाकिस्तान को। तो महाबत खान ने कहा कि 48 मन सोना किसी तरह से अगर वहां से आ जाए तो मैं आधा पाकिस्तान के खजाने में डाल दूंगा। ये वो लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद की थी, तो वो अपनी आमदन अपने पैसे में से रकम पाकिस्तान को देना चाहते थे। खैर इस अमर से तो हरा कोई वाकिफ है कि इन दोनों पाकिस्तान इंतहाई बहरान का शिकार था। अगरचे मुहिब्बे वतन लोग इस नौजायदा मुल्क की मदद ना करते तो साहब मामला जल्दी गड़बड़ हो सकता था। हम यकीनन गांधी जी के भी मरहूने मिन्नत हैं, हम उनके भी शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने भी पाकिस्तान को जो उसके असासे थे या जो विरासत में मिलना था उसके लिए कोशिश की थी और उन्होंने आवाज भी बुलंद की थी। नवाब साहब यानी नवाब महाबत खान खलूस दिल के साथ पाकिस्तान की खिदमत करना चाहते थे। अगर वो 48 मन सोने में से 24 मन सोना पाकिस्तान को दे देते तो यू कैन इमेजिन कि उस वक्त पाकिस्तान के लिए वो कितनी बड़ी बात थी, पाकिस्तान की मईशत में बहुत बेहतर हो जाना था। बहरहाल अब छोड़ कहां आए थे, जूनागढ़ में छोड़ आए थे। कितना सोना था, 48 मन सोना था, इसका इल्म सिर्फ नवाब महाबत खान को था और किसी को भी नहीं था। और अगर वो इंडियन गवर्नमेंट को उस वक्त कह देते कि जी 48 मन सोना, तो उन्होंने देना तो नहीं था, कभी भी नहीं देना था। हालांकि उनकी रियासत उनकी थी, विरासत उनकी थी, मगर उन्होंने तो नहीं देना था। अब नवाब साहब के पास सिर्फ एक ही सूरत बची थी कि गैर कानूनी जरिया इख्तियार किया जाए, यानी किस तरह से। साहब यहां पे किरदार आता है खोटे सिक्के का। खोटे सिक्के से मुराद एक स्मगलर से राबता किया जाता है। उस दौर का मशहूर स्मगलर था, उसका नाम था हाजी अब्दुल्ला भट्टी। हाजी अब्दुल्ला भट्टी अपने दौर के बहुत बड़े स्मगलर थे और समुंदर पार सालियाबाद में, समुंदर पार बस्ती सालियाबाद में रिहायश पजीर थे। ये बस्ती कराची की बंदरगाह के माड़ी से तकरीबन 10 मील के फासले पर, नाम इनका था हाजी अब्दुल्ला भट्टी। बहरहाल उस वक्त अब्दुल्ला भट्टी की एज जो थी ना वो तकरीबन 80 साल के लगभग थी। ठीक, ये पाकिस्तान बनने के फौरन बाद जब महाबत खान को जब हुआ कि अब ये पैसा कैसे लाया जाए, इंडियन गवर्नमेंट तो नहीं लाने देगी, तो इनको कहा गया कि हाजी अब्दुल्ला भट्टी से रब्ता किया जाए। हाजी अब्दुल्ला भट्टी जिस जगह पे रहते थे किमाड़ी से तकरीबन 10 मील के फासले पे एक बस्ती थी जहां रहती थी और उनकी एज 80 ईयर्स थी और वो अपने पेशे को छोड़ चुके थे। बहरहाल नवाब महाबत खान को जब पता चला तो उन्होंने पाकिस्तान की एक नहायत काबिल एहतराम और आला तरीन शख्सियत से दरख्वास्त की कि वह अपने असर रसूख से अब्दुल्ला भट्टी को राजी कर लें कि बेशक आपने स्मगलिंग का पेशा छोड़ दिया मगर किसी तरह से मेरा ये 48 मन सोना हिंदुस्तान या जूनागढ़ से मेरी अपनी जायदाद है, मेरी अपनी रकम है, मेरा अपना सोना है, किसी तरह वो मुझे निकालने में मदद करें। उस मोहतरम हस्ती ने अब्दुल्ला भट्टी को अपने रूबरू तलब करके मुल्क और कौम की खातिर ये काम करने पर आमादा किया। जूनागढ़ समंदर के रास्ते कराची से 300 मील दूरी के फासले पे है। अजीम शख्सियत के हुक्म पर ये बूढ़े जनाब हाजी अब्दुल्ला भट्टी साहब जो हैं, इन्होंने अपने बेटों को लिया। इनके एक बेटे का नाम कासिम भट्टी और एक बेटे का नाम अब्दुल रहमान भट्टी था। इन्होंने क्या किया कि लॉन्चों के जरिए कराची से वाया सी ये जूनागढ़ की तरफ रवाना हो गए। इनके साथ अब्दुल्ला भट्टी, हाजी अब्दुल्ला भट्टी, इनका बेटा कासिम और इनका तीसरा बेटा अब्दुल रहमान, साथ में पुलिस के चंद एक कमांडोज भी इनके साथ शामिल हो गए। इन लोगों ने 1 बजे दोपहर को बहरी सफर शुरू किया और खुफिया रास्तों से होते हुए जूनागढ़ के साहिल पर पहुंच गए। जब ये जूना 300 मील की मुसाफत तय कि जूनागढ़ के साहिल पर पहुंचे तो उस वक्त रात के तकरीबन 10 बजे का वक्त हुआ था। खुफिया रास्तों, क्योंकि महाबत खान उस इलाके के था, उनका अपना इलाका था, वो वहां के नवाब थे, उनको एक एक जगह का उसके बारे में इल्म था। ये खुफिया रास्तों से होते होते महल के उस हिस्से तक पहुंच गए जहां पे महाबत खान ने ये 48 मन सोना जो था वो रखा हुआ था। बहरहाल शाही महल साहिल समंदर से कुछ ज्यादा दूर न था। पाकिस्तानी कमांडोज ने महल पर मुतयन भारतीय फौज के अफसरान और सिपाहियों से मुकाबला किया। और अब देखिए स्मगलर का हुस्ने किरदार। कहते हैं कि जब इंतहाई आला शख्सियत की मौजूदगी में ये साहब 48 मन सोना जूनागढ़ से लेके पाकिस्तान कराची आ जाते हैं और इन्होंने मनोअन 48 मन सोना, यानी हाजी अब्दुल रहमान, हाजी अब्दुल्ला भट्टी भी थे, उनके बेटे कासिम भी थे, अब्दुल रहमान भी थे और जाहिर है आर्मी के कमांडोज भी थे, इन्होंने मनोअन पूरा का पूरा 48 मन सोना जहां से निकाला था, निकालने के बाद उस आला शख्सियत की मौजूदगी में महाबत खान के सुपुर्द कर दिया। नवाब साहब ने हस्बे वादा 48 मन से 24 मन सोना हुकूमत पाक, और इसने बड़ा हेल्प किया था पाकिस्तान की मईशत को उस जमाने में बेहतर करने के लिए। 24 मन उन्होंने पाकिस्तान के खजाने को दे दिया और 24 मन उन्होंने अपने पास रखा। जो उनका अपने पास 24 मन सोना था नवाब महाबत खान के पास, उसमें से 24 में से 4 मन सोना, हम पाओ शेर छटांक की बात नहीं कर रहे, उसमें से 4 मन सोना हाजी अब्दुल्ला को दिया कि ये 4 मन सोना कि आप अगर ना होते तो हम तो ये सोना हासिल ही नहीं कर सकते थे। हाजी अब्दुल्ला ने ये सोना लेने से इनकार कर दिया और कहते हैं कि जारो कतार वो रोए जा रहे थे। बोले, बाबा मैंने सारी जिंदगी स्मगलिंग की मगर वो अंग्रेज का जमाना था, अब मैंने स्मगलिंग नहीं की, मैं तो इस पेशे को खैर बात कर चुका था, खुदा हाफिज कह चुका था, अब मैंने पाकिस्तान का हक हासिल किया है। महाबत खान ये तुम्हारी रकम थी, आप पाकिस्तान आ गए, मैंने तो सिर्फ आपकी रकम अदा की जिसमें मुझे पता है कि आपने 24 मन पाकिस्तान को दिए, तो मुझे ये 4 मन इसमें से उजरत नहीं चाहिए। उन्होंने कहा, मैं स्मगलर तो जरूर हूं मगर मैं मादरे वतन की दौलत को नहीं लूटूंगा। और कहते हैं उसके बाद हाजी अब्दुल्ला भट्टी दोबारा जारों कतार रोने लगे। कुछ देर बाद खामोश हुए और सिलसिला कलाम जारी रखते हुए क्या, मैं ये 4 मन सोना भी हुकूमत पाकिस्तान को देता हूं, यानी हमारे जो खजाने को, कौमी खजाने को दे देता हूं। इसके अलावा, इस 4 मन के अलावा मेरा जाती 3 मन सोना मेरे पास है, मैं वो भी हुकूमत पाकिस्तान। ये थी वो मोहब्बत जिन लोगों ने पाकिस्तान को बनते देखा था। कहते हैं कि फिर उस अजीम हस्ती और नवाब महाबत खान के आंसू भी रुक ना सके मगर ये आंसू खुशी के थे। आज साहब वो बंदा जो खोटा सिक्का था, स्मगलिंग करता था, मगर वतन के नाम पे न सिर्फ ये कि उसने वो सोना लेके आया, अपनी उजरत भी पाकिस्तान के कौमी खजाने में डाली और अपने पास भी जो रकम थी वो भी पाकिस्तान के खजाने को दे दी। और आज के दौर में आप देखिएगा हर इंसान ये समझता है, और खासतौर पे आपके पॉलिटिशियंस, हमारे पॉलिटिशियंस, आपके ब्यूरोक्रेट्स, हमारे ब्यूरोक्रेट्स पाकिस्तान को जब, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। मुझे आज शाजिया जी ने फीडबैक दिया कल के प्रोग्राम में, खबर नईम हाशमी से जब मेरी बात हो रही थी, पहली बात तो ये कि मैं अपने उन तमाम पाकिस्तानी भाइयों और बहनों से बात करना चाहती हूँ कि आपको अगर पाकिस्तान के बारे में नहीं, मुझे पता है कि आपकी और मेरी शख्सियात से मोहब्बत है, अगर जो लोग नवाज शरीफ साहब से, मरियम साहिबा से, शहबाज से, वो भी शख्सी मोहब्बत में ही मुबतला है ना, वो भी बजाएं। मगर जब हम खोटे सिक्कों की बात करते हैं तो हम उन पॉलिटिशियंस की बात करते हैं जो एक शाख से उड़ के दूसरी शाख की तरफ चले जाते हैं, हम सिर्फ उनकी बात करते हैं, हम कोई और जातियात की बात नहीं करते। आपसे भी दरख्वास्त है कि पाकिस्तान मेरा अव्वलीन मकसद है, मगर यह मकसद नहीं है फिर तो हम इंतहाई दोगले हो गए कि अगर हम अपने ही अल्फाज को खा जाएं, यानी कल मेरी बात और थी और आज मेरी बात कुछ और है, तो इसका मतलब है मेरा तो अपना ही वजन कोई नहीं है। खबर नईम हाशमी रेनाउंड जर्नलिस्ट हैं और ये आज की बात नहीं है, ये 70s से, और उस शख्स ने वेरी एजुकेटेड फैमिली, मैंने उनसे कहा, आपसे कहा उनके भाई साहब यहाँ पे हैं, मगर अगर अशखास की बात होती है तो अशखास गलती कर सकते हैं, बिल्कुल अशखास गलती कर सकते हैं। पैगंबरों के बेटे गलती कर सकते हैं, ठीक है। हज़रत यूसुफ का जब जिक्र आता है, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जब जिक्र आता है, तो आप इमेजिन कीजिएगा कि उनके वालिद भी पैगंबर थे और उनके भाई जिन्होंने उनको कुएं में गिराया था वो कौन थे, पैगंबर की औलादी थे, मगर पैसे के लालच में उन्होंने अपने भाई को कुएं में भी गिराया और फिर बाप को जाके वो कपड़ा भी दिखाया कि भेड़िया ने उसको खा लिया। तो बुरे लोग अगर होते हैं तो बुराई, मेरे पास यहाँ पे इमाम सिराज वहाज हमारे स्टूडियो में तशरीफ लाए थे, इमाम सिराज वहाज ने, ही इज मोहम्मद अली बॉक्सर जो है उनके साथी, और मेलकम एक्स इनके साथी हैं, इन्होंने इस्लाम कबूल किया, इस्लाम का मुतालिया किया, कहते हैं कि इनका बेटा जाती तौर पे एक चीज में इन्वॉल्व हो गया था और इन्होंने खुद पुलिस को इत्तला दी थी, मेरा अगर अपना खून भी गलत काम करे तो इफ आई एम ऑनेस्ट तो आई विल नॉट सेव माई चाइल्ड फॉर हिज बैड करेक्टर, शायद मैं आज की अगर शिकायत कर दूंगी तो वो उसके मुस्तकबिल के लिए बेहतर होगा। कहते हैं ना, निप द ईविल इन द बड। आइए साहब एक गीत सुनते हैं, बड़ी लंबी सारी बातचीत हो गई है, अगर आपकी तबीयत पे गिरा गुजरी है तो मैं मुआजरत की ख्वास्तकार हूँ। बहुत शुक्रिया जुनेद, आपने मेरी तवज्जो मबजूल करवाई है पाकिस्तान की उस खबर की तरफ जिसमें आपने मुझे बताया है कि पाकिस्तान में आर्मी ऑफिसर्स की शहादत हुई है। लीजिए मैं उस खबर की तरफ भी आपको भी लिए चलती हूँ। और जी माजी भाई, अगर आपके पास, शाजिया जी ने वैसे न्यूज़ को इन डिटेल कवर करना है, थैंक यू वेरी मच बेटा, आपने मुझे इन्फॉर्म किया, कहते हैं ना जो तुम लोड पहन दिए थे हर चीज, बहुत शुक्रिया हमारे स्पॉन्सर्स का। दो एक स्पॉन्सर्स डॉक का जिक्र करती चलूं, एक तो मैं जिक्र करती हूँ डॉक्टर पद्मजा, ईस्ट एंड में वार्डन एंड शेपर्ड के इंटरसेक्शन पे डॉक्टर पद्मजा, फैमिली डेंटिस्ट हैं, तमाम इंश्योरेंसेस को एक्सेप्ट करती हैं, इवन अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं भी तो आप डेंटल ट्रीटमेंट के लिए रब्ता करें। मैं उनके बारे में हमेशा कहती हूँ शी इज अ टूथ सेवियर, अगर आप अपने दांतों की हिफाजत, क्योंकि असली दांत असली होते हैं, तो डॉक्टर पद्मजा से आप रब्ता कर लीजिएगा। नंबर मैं दोबारा दिए देती हूँ, 416-299-7466 उनका नंबर है।
और अगर आपके सुनने में कमी आ रही है या कमी आ गई है आपके या आपके घर वालों में, तो सब हेयर मैक्स के शिराज भाई से कांटेक्ट जरूर करें। 416-792-8792 इनका फोन नंबर है, ये दो लोकेशन से आपको सर्व करते हैं, टोरंटो एंड मिसागा में, और जो आपका टेस्ट होगा वो एब्सोल्युटली फ्री दिया जाएगा, सिर्फ साज आवाज का नाम लेना है आपने, बस और क्या चाहिए आपको।
ये नॉर्मली $80 का टेस्ट है जो ये एब्सोल्युटली
$100 $100 का टेस्ट है
जो मुझे एससी का पता था।
अच्छी बात, $100 कोविड की वजह से बढ़ गया वो। 416-792-8792 इनका फोन नंबर है। खाने पीने की बातचीत भी हो जाए, साहब ग्रिल एंड हट की बात कर लें। 1935 ड्रू रोड मिसिसागा में ड्रू एंड ब्रैमली के कॉर्नर पर इमरान भाई यहां पर होते हैं। पाकिस्तान के लजीज खाने खाने हो तो आजकल तो टेक आउट है, दो दिन की बात है साहब, उसके बाद तो फिर आप बैठ के भी खा सकेंगे वहां पर। ग्रिल एंड हट इमरान भाई के पास चले जाएं। 9054058383 इनका फोन नंबर है।
लीजिए साहब, मैं पाकिस्तान की न्यूज़ जिसके बारे में मुझे अभी निशानदेही की गई है देख लेती हूँ। और वो कहते हैं कि चेक पोस्ट पर हमले में 10 फौजियों की शहादत की तस्दीक की गई है, 3 शिद्दत पसंदों को जिंदा गिरफ्तार भी किया गया। पाकिस्तानी फौज ने तस्दीक की है कि बलूचिस्तान के इलाके केच में 25 और 26 की दरमियानी शब शिद्दत पसंदों के हमले में 10 जो हमारे फौजी अहलकार हैं उनकी शहादत की खबर मिली। अब ये वो लोग हैं जो अपनी जानों की कुर्बानी दे के मुल्क की हिफाजत करते हैं, सैड है मैन। तो बहरहाल इन वो कहते हैं पाकिस्तानी फौज ने तस्दीक कर दी है। मंगल और बुध की दरमियानी शब असम्बले के बाद इनसे मुतल्लिक खबरें गर्दिश करने लगी थी, लेकिन पाकिस्तानी फौज के ताल्लुकात आमा ISPR, लोगों को ये भी बड़ी पेट में दर्द है वो जी ISPR है, इंडिया ने उसके मुकाबले में भाई बना लो, दुनिया में इंसान किसी की अच्छी चीज देख के अपने मुल्क में भी बना लेता है। और ISPR कोई स्पाइंग एजेंसी नहीं है, आर्मी इज अ वेरी ऑर्गेनाइज इंस्टीट्यूशन इन पाकिस्तान, यानी आर्मी से मुतलिक जो न्यूज है उनका अपना इदारा ही उस न्यूज को देता है। आप पुलिस डिपार्टमेंट में देख लें, हर पुलिस ऑफिसर अगर इंटरव्यू देने बैठ जाए कैनेडा में तो डू यू थिंक थिंग विल बी ऑर्गेनाइज? नो। अगर एक पुलिस ऑफिसर ही अगर स्टेशन के ऊपर या कहीं जाके इंटरव्यू देता है तो वो बाकायदा अपने इदारे से परमिशन लेता है कि मुझसे क्या पूछा जाएगा, क्या बात का जवाब दूंगा, क्या नहीं करनी, क्योंकि क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन हर जगह पे हुआ करती होती है। इस हमले केच के हमले की तस्दीक करते हुए ISPR ने जुमेरात को एक बयान में कहा है कि शिद्दत पसंदों ने केच में एक चेक पोस्ट पर हमला किया था और इस हमले के बाद किए गए ऑपरेशन में 3 शिद्दत पसंदों को गिरफ्तार कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह उनको मारा नहीं किया, उनको अरेस्ट कर दिया गया। आप देखते हैं कि आगे क्या सूरत हाल होती है। महकमा दाखिला के अहलकार के मुताबिक ये हमला जिला केच में दश्त के इलाके सबदान में किया गया था और ये बलोची केच जो है ना बलोचिस्तान का ईरान से मुतसिल इलाका है और ये इलाका बलोचिस्तान के दारुलहुकूमत क्वेटा किसी अंदाजन 800 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। बहरहाल मेक लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये आर्मी ऑफिसर्स जो चाहे वो जवान हैं अपनी नींदों को बर्बाद करते हैं मेरी और आपकी हिफाजत के लिए। मैं आपको बताती हूँ कि आर्मी को डीफेम करने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। अब आगे आगे आप देखिएगा कि और दिलों से इनकी रिस्पेक्ट को कम करने की कोशिश की जाएगी। शुक्रिया हमारे स्पॉन्सर्स का और डॉक्टर नाजिया रहमान का जिक्र करना चाहती हूँ। डॉक्टर नाजिया रहमान फैमिली डेंटिस्ट हैं। अगर आपने दांतों को एक गाना कौन सा सुना रहे हैं आप?
आपने कहा था कि वो एक नजम पढ़ेंगी उसके बाद फिर गाना होगा, तो गाना तो है निकला हुआ।
गाना एक सुनाते हैं हम आपको। डॉक्टर नाजिया रहमान का आप नंबर नोट कर लीजिएगा और 65 माउंट पेलियर स्ट्रीट पर वाक्य यूनिट नंबर 104 स्टेट ऑफ द आर्ट क्लिनिक है। शी इज अ वंडरफुल डॉक्टर, तमाम इंश्योरेंसेज को एक्सेप्ट कर दी, इवन दो अगर आपके इंश्योरेंस नहीं भी तो आप उनसे रब्ता जरूर कर दीजिएगा। लेजर टूथ वाइटनिंग है, रूट केनाल है, डेंटल इम्प्लांट है, फ्री ट्रीटमेंट फॉर द किड्स, हेल्थी स्माइल ओंटेरियोस के तहत। 9058721100 साहब, मेरा नाम आरिफा मुजफ्फर, रियल स्टेट से मैं वाबस्ता हूँ और आज मेरी एक प्रॉपर्टी हमने जो सेल की थी यहाँ मेन स्ट्रीम की एक कंपनी है, उन्होंने उसको शोकेस करने जा रहे हैं। दे गॉट परमिशन फ्रॉम मी, मैं बल्कि आपको आई एम नॉट मेकिंग इट, आई विल शेयर यू देयर मैसेज। उन्होंने मुझे मैसेज जो किया मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये 11 मूनस्टोन के नाम से है, अपनी हाईएस्ट प्राइस के ऊपर ये गई है प्रॉपर्टी। और देखिए उन्होंने लिखा है, प्लीज सेंड मी योर, नहीं ये तो मैंने उनसे उनको फिर प्राइस उनसे मैं, हाय आरिफा, वी आर अबाउट टू पोस्ट योर लिस्टिंग 11 मूनस्टोन कोर्ट हैमिल्टन ऑन आर इंस्टाग्राम एंड वांट टू गिव यू क्रेडिट, कुड यू प्लीज शेयर विद अस योर हैंडल एंड जो भी इसकी आइडेंटिटीज हैं। थैंक यू, इट्स अ रिकॉर्ड सेल के ऊपर ये प्रॉपर्टी गई है इन हैमिल्टन के इलाके में। तो बहरहाल मेरा नंबर 6478986245, ला कुवत इल्ला बिल्ला, इंसान की कोई कुवत नहीं, ये हमारा टीम वर्क होता है जो हम किसी चीज को मजीद सक्सेसफुल कर सकते हैं। डीजे साहब, गैस की, जब मैं कनाडा आई थी तो गैस 39 सेंट्स, फिर 39 सेंट से 47, कभी कभी सेल पे आया करती थी ना रात के वक्त, शाम के वक्त जब डलवाते थे तो हमको 37 सेंट की भी मिल जाया करती थी। वैसे दिन के वक्त या अक्सर, वैसे तब तो दिन रात का इतना होता भी नहीं था, मगर कभी कभी स्पेशल लग जाएगा।
लीटर की बात कर रहे हैं,
39 सेंट्स पर लीटर। तो अभी आप क्या गैलन में डलवाते हो?
ओ, मेरी बात सुन लें, कितना बड़ा मुर्गा है वो, तो मैं पहले दूसरा हाथ तो रखने थे मुझे। मैं ये बताऊं कि जब मैं आया था कनाडा में तो 28 सेंट्स अ गैलन थी।
अच्छा, नहीं, जब हम आए थे 1900 में, तो 1900 में गैस की कीमत 43-44 सेंट्स होती थी, कभी बड़ी महंगी होती थी वीकेंड पे तो 46-47 पे भी चली जाया करती थी, मगर अक्सर औकात हमको 39 की मिल जाया करती थी। अब आप देखिएगा, इस 27 साल के दौरान $1 गैस की कीमत बढ़ी है, वो जो 39। और मजे की बात मैं आपको बताती हूँ कि आज गैस भरवा लें अपनी गाड़ियों में, अगले हफ्ते में गैस और महंगी हो जाएगी। Is that right? आज $1.50 $1.49 पे गैस है, नेक्स्ट वीक में गैस की प्राइसेस होगी। द प्राइस ऑफ गैस इन ग्रेटर टोरंटो एरिया इज सेट टू रीच अनदर रिकॉर्ड हाई टुमारो, एंड इट इज अनलाइकली द ड्राइवर्स विल गेट रिलीफ एट द पंप्स एनी टाइम सून, अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द इंडस्ट्री एनालिस्ट। और $1.52 पे आपको कल गैस मिलेगी, इसलिए अगर आपकी गाड़ियों में गैस की गुंजाइश है तो आज भरा लो, एक जेरी कैन भी भरा के रख लो। ठीक है, गाना सुनिए साहब, एंजॉय दिस सॉन्ग।
तेरे बिना जिंदगी से कोई
की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है, दिन के वक्त जब ये फुहारे।
कहां आ पाऊंगी मैं दिन में, लंबी थी ना।
जी
बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन